करेंगी मुझसे दोस्ती? पूरी बात कहने के बाद एक बार फिर वो उम्मीद भरी नजरों से राधिका को देखने लगा। राधिका जो उसकी बातों में कहीं खो गई थी, मन किन्हीं ख्यालों में उलझ गया था। कुछ पल तो खामोशी से उसे तकते हुए उसकी कही बातों के बारे में सोचती रही, जिसने उनके दरमियान मौजूद अजीब से तनाव का अंत कर दिया था। उसके मन को उन ख्यालों से आज़ाद कर दिया था जिनके कारण वो उसके साथ सहज नहीं हो पाती थी। कुछ देर की खामोशी के बाद राधिका ने गहरी सांस ली और गंभीरता से कहा, आपको लगता है कि किस्मत हमें बार बार एक दूसरे से मिलवा रही है, तो एक काम करते हैं, ये फैसला भी किस्मत पर ही छोड़ देते हैं। अगर किस्मत ने दोबारा हमें मिलवाया तो मैं पुरानी सभी बातों को भुलाकर आपकी दोस्ती को एक्सेप्ट कर लूंगी। आज भी हमें किस्मत ने ही मिलवाया है, इस हिसाब से आपको मेरी दोस्ती को एक्सेप्ट कर लेना चाहिए। माधव ने अपनी बात पर जरा जोर दिया, पर राधिका ने सौम्यता से उसकी बात पर एतराज जता दिया। नहीं, इस बार नहीं, अगली बार। मैं देखना चाहती हूँ कि क्या सच में तकदीर हमें मिलवाने के लिए ऐसे संयोग बना रही है या फिर ये मात्र इत्तफाक है और कुछ भी नहीं। चलिए ठीक है, अगर आपकी यही इच्छा है तो यही सही, पर बाद में अपनी इस बात से मुकर मत जाइएगा। अगर इत्तफाक से दोबारा हमारी मुलाकात हुई तो आपको मेरी दोस्ती स्वीकार करनी होगी, बीती बातें भुलाकर एक नई शुरुआत करनी होगी। बिल्कुल, मैं अपनी बात से कभी नहीं मुकरती। अगर हमारी दोबारा मुलाकात हुई, वो भी इत्तफाक से, तो मैं ज़रूर आपसे दोस्ती कर लूँगी। इंसान अच्छा है आप, कम से कम मेरे लिए तो अच्छे ही हैं। अब की बार एक सच्ची मुस्कान उसके लबों पर ठहरी थी। दोनों बात कर ही रहे थे भी अक्षय वहाँ आ गया, और उसके कुछ मिनट बाद ही आहाना भी आ गई। उनका डिनर भी आ चुका था तो उन्होंने खाना शुरू कर दिया। इस बीच हल्की फुल्की बातें भी होती रहीं। अक्षय और आहाना दोनों ने ही नोटिस किया कि अब माधव और राधिका पहले से काफ़ी सामान्य व्यवहार कर रहे थे। जो तनाव और अजीब सा खिंचाव पहले उन्होंने महसूस किया था, अब नहीं था। दोनों आपस में बात अब भी नहीं कर रहे थे, पर उनसे ठीक ठाक बात कर रहे थे। डिनर के साथ ही सबने खाने की तारीफ भी की। उसके बाद अक्षय और आहाना राधिका और माधव को फिर दोबारा ऐसे मिलने का कहकर घर के लिए निकल गए, जहां उनकी चंगू मंगू की जोड़ी, मतलब दोनों नन्हे शैतान, उनका बड़ी ही बेसब्री से इंतजार कर रहे थे। उनके साथ ही राधिका भी घर के लिए निकल गई और माधव अपना काम समेटने लगा। दीदी, कैसा रहा आपका डिनर? मज़ा आया? आहाना दी के साथ खूब बातें की होंगी ना आपने? साथ में कोई फोटो वोटो भी लिया नहीं? कहाँ गए थे आप लोग डिनर के लिए? खाना कैसा था वहाँ का? आप तो आज आहाना दी के हस्बैंड से भी मिली होंगी ना? कैसे हैं वो? फोटो में तो बड़े हैंडसम दिखते हैं, बिल्कुल किसी फिल्मी हीरो जैसे। असल में भी उतने ही हैंडसम और चार्मिंग है क्या? आपने बात की उनसे? बात करने में कैसे हैं? आहाना दी तो बहुत तारीफ करती है उनकी। सच में उनके हस्बैंड उतने ही अच्छे हैं? राधिका आशुतोष जी से मिलकर अपने कमरे में चली आई थी। कपड़े बदलने के बाद वो ड्रेसिंग टेबल के सामने खड़ी अपनी घड़ी, इयररिंग्स वगैरह उतार रही थी। बालों को खोलकर ढीली चोटी बना रही थी। इन शॉर्ट, वो सोने की तैयारी में थी और उसके बेड पर पसरी अप्पू मैडम बड़ी ही एक्साइटमेंट के साथ नॉनस्टॉप उससे सवाल पर सवाल किए जा रही थी। पर जब राधिका ने उसके किसी सवाल का जवाब नहीं दिया और खामोशी से अपने काम में लगी रही, तो अप्पू मैडम खींच उठी। गुस्सा उसकी छोटी सी नाक पर चढ़ बैठा था और नाराजगी से उसने अपने गालों को फुला लिया था। दीदी, मैं कब से खुद ही खुद में बोले जा रही हूँ? इतने सवाल किए मैंने आपसे, पर आप मेरे किसी भी सवाल का जवाब ही नहीं दे रही हैं। मैं क्या यहाँ भूतों और दीवारों से बातें करने आई हूँ? अब जाकर राधिका उसकी ओर पलटी और अप्पू का नाराजगी भरा चेहरा देखकर सौम्य सी मुस्कान उसके लबों पर ठहर गई। तुम मुझे बोलने का मौका दो तब तो मैं कुछ कहूँ ना। जब से आई हो नॉनस्टॉप सवाल पर सवाल ही किए जा रही हो, एक मिनट रुककर सांस तक नहीं लिए तुमने। मैं तो तब से इंतजार कर रही थी कि तुम अपने सारे सवालों को पूछने के बाद चुप करो, तो मैं तुम्हारे सवालों के जवाब दूं। अर्पिता कुछ पल नाराजगी से उसे घूरती रही, फिर नाक से कोड़ते हुए बोली, अब तो चुप हूं मैं, तो जवाब दीजिए मेरे सवालों का। डिनर अच्छा था, रेस्टोरेंट में गए थे हम, खाना अच्छा था और मुझे वहां अच्छा भी लगा। फोटो लेना पसंद नहीं मुझे, तो कोई फोटो नहीं ली, वरना दिखाती तुम्हें। आहाना के हस्बैंड से भी मिली मैं, और मिली तो जाना कि जितना सुना था कम ही सुना था। दिखने में तो हैंडसम है ही, साथ ही दिल के भी बहुत अच्छे हैं। उनका नेचर फ्रेंडली लगा मुझे। पूरे डिनर के दौरान उन्होंने एक बार भी हमें बोर नहीं होने दिया। आहाना जैसी है उसके लिए बिल्कुल परफेक्ट हैं वो। जब दोनों साथ खड़े होते हैं तो निगाहों में उनकी छवि बस जाती है, इतने जंचते हैं एक दूसरे के साथ। अब और कुछ पूछना है तुम्हें? राधिका ने तो जैसे उसके सवालों की पूरी लिस्ट याद कर रखी थी और बड़ी ही सहजता से उसके हर सवाल का जवाब दिया था उसे। अर्पिता ने उसके सवाल पर इनकार में सर हिलाया और मासूम सी सूरत बनाकर उसे मस्खा लगाने लगी। दीदी, हम भी कभी चलेंगे ना बाहर डिनर पर, मैं, पापा और आप साथ में? राधिका जो उसके पास पहुंच चुकी थी, उसने प्यार से उसके गाल को छुआ और मुस्कुरा दी। अच्छा, चलेंगे, खुश? हाँ, और वहीं जाएंगे जहां आज आप गई थी। ओके, वहीं लेकर चलूंगी, और कोई फरमाइश? राधिका के इस सवाल पर अप्पू ने झट से इनकार में सर हिलाया और क्यूट सी शक्ल बनाकर अपनी पलकों को झपकाते हुए उसे देखने लगी। और आप मुझे हाना दी के हस्बैंड से भी मिलवाएंगी। जब हम कानपुर गए थे तब भी मैं उनसे नहीं मिल सकी थी। एक और ख्वाहिश जाहिर की थी उसने जिसे राधिका ने मुस्कुराकर स्वीकार कर ली। अच्छा, मैं हाना से इस बारे में बात करूंगी और कभी उसे डिनर पर इनवाइट कर लूंगी। तब तुम उसके हस्बैंड से भी मिल लेना और उसकी बहन से भी मिल लेना। पिछले बार तुम उससे भी नहीं मिली थी ना? अर्पिता ने झट से सर हिलाया और खुशी से चहकते हुए उससे लिपट गई। उसका बचपना देखकर राधिका की मुस्कुराहट गहरी हो गई। काफी देर तक दोनों बहनें बातें करती रहीं। अर्पिता हर छोटी बड़ी बात बड़ी ही दिलचस्पी से उससे पूछती रही। राधिका भी उसके सवालों के जवाब देती रही। अर्पिता उससे बात करते करते ही सो गई तो राधिका ने उसे ठीक से लिटाया और खुद बालकनी में आकर खड़ी हो गई। आकाश में मौजूद चांद की चांदनी उसके चेहरे पर बिखरी थी, जिस पर गंभीर भाव मौजूद थे। आंखें शून्य में कहीं तक रही थी और जहन में माधव की कहीं बातें घूम रही थी। कैसे बताऊं आपको कि आपसे कोई परेशानी नहीं मुझे? ये नाराजगी बेरुखी आपसे नहीं है, खुद से और अपने नसीब से है। मैं दूर आपसे नहीं बल्कि अपने दिल में पनपने वाले एहसासों से भाग रही हूं, जो आपसे मिलने पर सालों बाद फिर से मुझे अपने वजूद का एहसास करवाने लगे हैं। मैं छुटला रही हूं उन जज्बातों और भावनाओं को जो आपसे मिलने के बाद एक बार फिर मेरे मन में पनपने लगे हैं। सालों पहले भी ऐसा ही हुआ था। किस्मत ने हमें मिलवाया था, मेरे मन में कुछ उम्मीदों ने जन्म लिया था, अनजाने तौर पर कुछ ख्वाब बुनने लगी थी मैं, आपको लेकर कुछ एहसास पनपने लगे थे दिल में, पर एक झटके में सब खत्म हो गया। बहुत वक्त लग गया था मुझे उस हकीकत को स्वीकारते हुए खुद को संभालने में, पर अब तो स्थिति पूरी तरह से बदल चुकी है। मैं अब वो पहले वाली राधिका नहीं रह गई, एक तलाकशुदा औरत हूं मैं, और अपनी जिंदगी की इस हकीकत को मैं कभी नहीं भूल सकती। जो सपने सालों पहले आपको लेकर इन आंखों ने सजाए थे, अब उन्हें दोबारा वहां अपनी जगह नहीं बनाने दे सकती। मैं खुद को अब ऐसी कोई झूठी उम्मीद नहीं देना चाहती जिसके टूटने के साथ मैं भी कतरा कतरा टूट कर बिखर जाऊं।
मैं फिर से अपने दिल को अपनी भावनाओं संग खिलवाड़ करने का मौका नहीं दे सकती, फिर उन एहसासों को अपने मन में पनपने नहीं दे सकती। सालों पहले एक बहुत बड़ी गलती हुई थी मुझसे, जो मैंने आपकी छवि को अपने मन में बसने दिया और उसका बहुत बड़ा खामियाजा भुगता है मैंने। दोबारा जानबूझकर खुद को उस आज़ाब में नहीं डाल सकती मैं। आपके और मेरे रास्ते सालों पहले जुदा हो चुके हैं, उनमें दोबारा टकराव सिर्फ हमारी मुश्किलों और परेशानियों को बढ़ाएगा, इसलिए मैं आपसे कोई रिश्ता नहीं रखना चाहती। आपसे मिलने से पहले बहुत अच्छी और सुकून भरी जिंदगी जी रही थी मैं, पर जब पहले आप मेरी जिंदगी में आए तो मेरी खुशियों पर शादी नाम का ग्रहण लग गया, और अब आए हैं तो मेरा सुकून, मन की शांति सब छिन गया है मुझसे। मैंने स्वीकार कर लिया है कि आप मेरी किस्मत में नहीं हैं, और अब ना तो मेरी जिंदगी में आपके लिए कोई जगह है और ना ही दिल में। जिस रास्ते पर कोई मंजिल ही नहीं, मैं उस रास्ते पर चलने की आदि नहीं। आपसे मुझे किसी तरह का कोई रिश्ता नहीं रखना, और मैं बस इतना चाहती हूँ कि जैसे अचानक आप मेरे सामने आए हैं वैसे ही वापस चले जाए और दोबारा कभी मेरा आपसे आमना सामना ना हो। यहाँ राधिका आज भी माधव से दूर जाना चाहती थी। कुछ अधूरे जज्बात थे जो आज भी उसके मन में टीस बनकर उठते थे, कुछ पुराने जख्म थे जो आज भी रिश्ते थे। माधव उसकी जिंदगी की किताब का वो पन्ना था जिसमें उसने बड़े ही अरमानों से खुशियों के रंग भरे थे, बड़ी ही हसरत से अपने ख्वाबों को सजाया था, पर किस्मत ने उसे ऐसा छला कि उसने उस पन्ने को ही फाड़कर अपनी जिंदगी से अलग कर दिया गया था। पर जब दोबारा अतीत के पन्ने खुलने लगे थे तो उसका मन व्याकुल था। बहुत ही बीती बुरी यादें उसके मन पर हावी होने लगी थीं, और वो इन सब से दूर जाना चाहती थी, माधव से दूर जाना चाहती थी जो कभी उसका बन ही ना सका। अपने दिल के उन एहसासों से भाग रही थी जो आज भी उसके भीतर सांस ले रहे थे, पर अब उन्हें बाहर आने की इजाज़त नहीं थी। राधिका के चेहरे पर पीड़ा, बेबसी, विवशता, नाउम्मीदी, वेदना जैसे कई भाव उभर रहे थे, और मन अपने उस अडिग फैसले पर दृढ़ता से खड़ा था कि माधव को अब किसी भी तरह अपनी जिंदगी का हिस्सा नहीं बनने देगी। इससे दूसरी ओर माधव भी तन्हा बैठा राधिका से आज हुई मुलाकात के बारे में ही सोच रहा था। टू बी कंटिन्यूड।